वर्तमान जन समूह। इस महाजन समूह का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कई प्रकार के वर्गीकरण सुझाए गए हैं। रिजली ने इस प्रकार वर्गीकरण किया था। पहला, वे जातियां जो किसी कबीले का परिवर्तित रूप है। आभीर जाति एक विशेष मानव श्रेणी थी जो घूमती घामती इस देश में पहुंची। यहाँ आकर वह विशाल हिंदू समाज की एक जाति बन गई। इस प्रकार की जातियों की विशेषता यह होती है कि वे भीतरी मामलों में अपना विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन और रीति नीति का निर्वाह करती हैं। केवल आंशिक रूप से ब्राह्मण श्रेष्ठता मान लेती हैं। विवाह श्राद्ध आदि के अवसर पर ये ब्राह्मणों को बुलाती हैं, पर कभी कभी इतना भी नहीं होता। डोम या दुशात या भूमिज आदि जातियां ऐसी होती हैं जिन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया है, पर शायद ही उनके किसी अनुष्ठान से ब्राह्मणों का संपर्क हो। दूसरा, कुछ ऐसी जातियां हैं जो विशेष प्रकार के कार्यों के करने के कारण एक विशेष श्रेणी की हैं। भंगी, चमार, लुहार आदि जातियां वस्तुतः विभिन्न व्यवसायों के कारण बनी हुई जान पड़ती हैं। ये जातियां हिंदू समाज में इतनी अधिक हैं कि कभी कभी इस आधार पर समूची जनता का विभाजन किया गया है। तीसरा, कुछ ऐसी जातियां हैं जो मूलतः कोई धार्मिक संप्रदाय थी। अतीत एक तरह के गृहस्थ सन्यासियों की जाति है। बंगाल के बोस्टम वैष्णव संप्रदाय के पर्वतीय जाति रूप हैं। दक्षिण भारत के लिंगायत भी ऐसे ही शैव साधु हैं। चौथा, कुछ ऐसी जातियां हैं जो दो जातियों के मिश्रण से बनी हैं। यद्यपि आजकल प्राचीन शास्त्रकारों के द्वारा पुनः पुनः व्याख्यायित वर्ण शंकर जाति की सिद्धांत को नहीं मानने का फैशन सा चल रहा है, तथापि ऐसी सैकड़ों जातियां और उपजातियां हैं जो वस्तुतः ही दो जातियों के मिश्रण से बनी हैं। रिजली ने ऐसी जातियों की लंबी सूची दी है। उदाहरणार्थ, मुंडा जाति की 9 शाखाएं हैं जिनके नाम हैं खंगार मुंडा, खरिया मुंडा, कोपत मुंडा, सद मुंडा, सबर मुंडा, करंग मुंडा, महिली मुंडा, नामवंशी मुंडा और राम मुंडा। ये नाम ही सूचित करते हैं कि मुंडा जाति के साथ इन जातियों का मिश्रण हुआ है। पांचवा, ऐसी भी जातियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय जाति या नेशनल कास्ट कहा जाता है। रिजली ने कहा है कि जिस देश में किसी प्रकार की राष्ट्रीय भावना विद्यमान नहीं है, वहां राष्ट्रीय जाति का होना विरोधाभास जैसी बात है। परंतु भारतवर्ष में ऐसी जातियां पाई जाती हैं जो वस्तुतः एक राष्ट्रीय इकाई का भग्नावशेष हैं। नेपाल के नेवार ऐसी ही जाति है। इनमें कई ऊंची नीची और मध्यवर्ती जातियां हैं और इनमें हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म प्रचलित हैं। इसी प्रकार विदेशी पंडितों ने पश्चिम भारत की मराठा जाति को भी एक राष्ट्रीय जाति माना है। कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो वस्तुतः मूल निवास स्थान से दूर जाकर बसी हैं, इसलिए मूल जाति से इनका संबंध छूट गया है और इस प्रकार एक नवीन जाति के रूप में बदल गई हैं। ऐसी जातियों का उदाहरण प्रत्येक देश में प्रचुर मात्रा में मिलता है। सातवां, फिर भी ऐसी भी जातियां हैं जो रीति नीति का ठीक पालन न करने के कारण मूल जाति से अलग कर दी गई हैं और इस प्रकार एक नई जाति के रूप में बदल गए हैं। इसी प्रकार की आचार भ्रष्ट जातियों को मनवा के धर्म शास्त्रों में व्रात्य कहा गया है। ऐसे व्रात्यों के यहाँ यजन याजन करने वाला ब्राह्मण प्रायश्चिति बताया गया है। कभी कभी विधवा विवाह के प्रश्न पर एक ही जाति की दो शाखाएं हो गई हैं। जो शाखा विधवा विवाह करती है वह अधम और जो नहीं करती है वह उत्तम मानी जाती है। आधुनिक काल में देखा गया है कि छोटी जातियों में से कुछ एक विधवा विवाह की चलन बंद करके ऊंची जाति होने का दावा करने लगी हैं। इस प्रकार इस महादेश की जातियों के सैकड़ों स्तर हैं। नाना पंडितों ने नाना भाव से इस अनन्य साधारण भारतीय विशेषता का अध्ययन किया है। रिजवी साहब ने अपने अद्भुत पांडित्यपूर्ण अध्ययन के अंत में इस जाति भेद के संबंध में निम्नांकित 9 सिद्धांत निश्चित किए हैं। आचार्य सेन के ग्रंथ के पाठ के इन सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार है। पहला, इस देश के निवासियों के शारीरिक विशेषताओं के 7 टाइप हैं। ऊपर देखिए, जिनमें केवल द्रविड़ टाइप ही विशुद्ध देशी टाइप है। हिंदी, आर्य, मंगोल और तुर्क ईरानी टाइप प्रधानतः विदेशी हैं। बाकी 3 अर्थात आर्य द्रविड़, शक द्रविड़ और मंगोल द्रविड़ टाइप द्रविड़ जातियों के साथ विदेशी जातियों के मिश्रण से बने हैं। द्वितीय, इन विशेष टाइप के मन बनने से भारतवर्ष के प्राकृतिक भाव से अन्य देशों से अलगाव का प्रधान प्रभाव रहा है। इस अलगाव का नतीजा यह हुआ है कि प्रत्येक आक्रमणकारी जाति अपने साथ बहुत कम स्त्रियों को ले आ सकती है और इसलिए इस देश की स्त्रियों से विवाह करने को बाध्य हुई है। तीसरा, इस नियम का एकमात्र अपवाद हिंद आर्यों का प्रथम दल रहा है। चौथा, भारतीय जन समूह के सामाजिक संगठन में वे दोनों प्रकार की जातियां हैं जिन्हें अंग्रेजी शब्द ट्राइब और कास्ट से सूचित किया जाता है। भारतीय जाति विज्ञान के विदेशी आलोचकों ने ट्राइब शब्द को इस प्रकार समझाया है, ट्राइब परिवारों या परिवार समूहों का एक ऐसा दल है जो किसी एक ऐतिहासिक पुरुष या पौराणिक व्यक्ति या किसी विशेष टोटेम के संतान रूप में अपना परिचय देता है। ये साधारणतः एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही रीति नीति का पालन करते हैं और एक विशेष प्रदेश को अपना मूल स्थान बताते हैं। एक ट्राइब का पुरुष या स्त्री दूसरी ट्राइब की स्त्री या पुरुष से विवाह कर सकता है, परंतु कास्ट में यह बात संभव नहीं है। एक कास्ट का व्यक्ति दूसरी कास्ट के व्यक्ति से वैवाहिक संबंध नहीं रख सकता, पर ऐसा हो सकता है कि एक ही कास्ट के 2 ऐसे कुल हों जो अपना मूल पुरुष 2 भिन्न भिन्न व्यक्तियों को बताते हैं। आभीर अर्थात अहीर मूलतः एक ट्राइब थी जो अब कास्ट में परिणत हो गई। ब्राह्मण या बनिया कभी भी ट्राइब के रूप में नहीं थे। हिंदी में ट्राइब के लिए गोत्र, सगोत्र जाति या कबीला और कास्ट के लिए सिर्फ जाति शब्द का व्यवहार किया जाता है। पांचवा, सगोत्र जाति और साधारण जाति दोनों ही अंतर विवाह, बहिर्विवाह और अनुलोम विवाह वाले उप विभागों से विभक्त पाई जाती है। अंतर विवाह जहाँ एक जाति का व्यक्ति उसी जाति के व्यक्ति से विवाह करने को बाध्य है, बहिर्विवाह जहाँ एक जाति का व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह करने को बाध्य है, और अनुलोम विवाह जहाँ एक जाति की स्त्री केवल अपने समान उच्च वर्ण के पुरुष से विवाह करने का को बाध्य है, निम्नतर वर्ण से नहीं। छठा, बहिर्विवाह वाली जातियों में अधिकांश जातियाँ टोटलिस्ट हैं। टोटेम शब्द की व्याख्या के लिए आचार्य सेन की पुस्तक का पृष्ठ 105 देखिए। जातियों का वर्गीकरण, सातवां, जातियों का वर्गीकरण केवल सामाजिक श्रेष्ठता के आधार पर किया जा सकता है, पर समूचे भारतवर्ष की जातियों के वर्गीकरण की कोई एक योजना नहीं बनाई जा सकती। आठवां, जातियों के संबंध में स्मृतियों और पुराणों में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, अर्थात जातियां संकरतावश या भिन्न भिन्न जातियों के अंतर जातीय विवाह का कारण बनी है, इसे शायद है। यद्यपि इसका वस्तु स्थिति से कोई अधिक संबंध नहीं है, तथापि भारतवर्ष में यह सिद्धांत सर्वत्र माना जाता है। नौवां, जाति भेद का मूल अनुसंधान एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान कठिन है। हम लक्ष्य किए गए तथ्यों की आंशिक समानता पर से केवल ऐसे अनुमान गिरा सकते हैं जो कम या ज्यादा संभव जान पड़ते हैं। जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वे निम्न तीन बातों पर अवलंबित हैं। क, कुछ कुछ विशेष विशेष जातियों की श्रेणी विभाग और विशेष विशेष शारीरिक विशेषताएं जिनके द्वारा मानव मंडली की वैज्ञानिक परख की जाती है के संबंध पर। ख, भिन्न भिन्न रंगों की मिश्रित जातियों के विकास पर। और ग, परंपरा प्राप्त दंत